सद्गुरु से देवी नदी परब्रह्मसु परणाम अनंत कोटि संत रामदास निसदिन करु सलाम नमो राम गुरुदेव दी जनत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल कर रामदास हरंद राम। सेठ जी कैसे निष्काम थे कल बताया गया। निष्कामता की हद है, देखो भगवान भी मिले और आपसे कहें कि वरदान मांगो तो भगवान को वापिस जवाब देना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप मांगो हमसे, हम क्यों मांगे। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी चीज आप है, आपसे बड़ी कोई चीज है नहीं। आप हमको मिल गए तो आपके मिलने से हम भी बड़े हो गए। अब आपको क्या चाहिए मांगो, ऐसी बात। उनके काम करने की शैली कैसी थी, जो बातें कोई सोच नहीं सकता उन्हें सेठ जी ने करके दिखा दिया। उनकी कार्य शैली के कुछ प्रसंग हैं जो उनकी कर्तव्य निष्ठा, भगवत विश्वास और सेवा भाव को प्रकाशित करते हैं। सेठ जी मानव मात्र को भगवत प्राप्ति के लिए साधन भजन में लगाना चाहते थे, लेकिन लोग उनके पास पहले आते ही नहीं थे। तब सेठ जी ने देखा कि लोगों को कैसे बुलाऊं। तब सेठ जी ताश का अद्भुत खेल दिखाकर दो चार को इकट्ठा कर लिए और फिर सत्संग की बातें छेड़ दी। ऐसे करते दो चार पांच आठ सात ऐसे आते आते उन्होंने सत्संग का कार्यक्रम चालू किया। इस तरह से सेठ जी ने अपने अथक परिश्रम से न जाने कितने कितने लोगों को भगवत प्राप्ति में लगाया। अब उनकी विचित्र बातें सुनिए। एक बार चूरू में हरिजन बस्ती में आग लग गई, उनके सारे झोपड़े जलकर राख हो गए। सेठ जी को पता लगने पर उन्होंने तुरंत उनके लिए नए झोपड़े बनवाने की व्यवस्था कर दी। फिर उन नए झोपड़ों में फिर आग लग गई। बिचारे वे हरिजन पुनः आश्रय विहीन हो गए। सेठ जी को पता चला तो उन्होंने फिर झोपड़ियां बनवा दी, किंतु उन झोपड़ियों में फिर आग लग गई। महाराज जी वहीं थे। सेठ जी ने पुनः झोपड़ियां बनवाने का आदेश दिया। तब किसी स्वजन ने कहा कि सेठ जी आप ये क्यों प्रयास करते हो, भगवान नहीं चाहते हैं कि इन लोगों के लिए झोपड़ी बने, तभी तो बार बार झोपड़ियों में आग लगती है, अतः इन लोगों के लिए नवीन झोपड़ियां नहीं बनवानी चाहिए। इस पर सेठ जी ने कहा कि भगवान क्या चाहते हैं और क्या करते हैं ये देखना हमारा काम नहीं है। हमारा कर्तव्य यह है कि अपनी दृष्टि ठीक लक्ष्य पर रहे एवं जो संकटग्रस्त हो उनकी यथाशक्ति उत्साहपूर्वक सहायता करे। यह तो भगवान हमें सेवा का सुअवसर दे रहे हैं, बार बार इनकी झोपड़ियां जलवाकर भगवान हमको बार बार झोपड़ियां बनवाने का मौका देते हैं। फिर सेठ जी ने वहां एक सप्ताह तक कीर्तन करवाया, फिर झोपड़ियों में आग लगना बंद हो गया। ऐसे ही सेठ जी बांकुड़ा में रहते थे। एक बार वहां भीषण अकाल पड़ गया। सेठ जी ने 21 सेवा केंद्र खोले। कोई आए दो घंटा कीर्तन करके और निश्चित मात्रा में अन्न ले जाओ। इसमें काफी धन आने लग गया। एक दिन उनके छोटे भाई ने पूछा, सेठ जी के छोटे भाई ने, भाई जी ये काम कब तक चलेगा? वो काफी धन लगने लगे, आने नहीं, काफी धन लगने लगा उसमें कि ये कब तक चलाओगे, अपना तो धन खत्म हो जाएगा। सेठ जी ने उत्तर दिया, जब तक हम लोग इन मांगने वालों की स्थिति में न आ जाएं तब तक हमको ये काम करना है। ये मांगने वाले की जगह हम भी मांगने बैठ जाएं। फिर अकाल समाप्त हो गया। अकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने में समाप्त हो गया कार्य सुतरा। स्थानीय लोगों ने फिर एक अभिनंदन समारोह किया कि सेठ जी का अभिनंदन करेंगे, सेठ जी ने कितना बड़ा काम किया। सब वक्ताओं के बोलने के बाद सेठ जी ने कहा, हमने तो आपसे अर्जित धन भी पूरा आपकी सेवा में नहीं लगाया। हम राजस्थान से आए और आपके बंगाल में हमने धन कमाया, वो धन भी हमने पूरा नहीं लगाया। जितना हमने यहां धन कमाया वो पूरा लगा देते, और उसके बाद यदि हम मारवाड़ से और धन लाते और आपकी सेवा में लगाते तो आप कह सकते थे कि आपने कुछ किया है। हमने तो आपकी चीज भी पूरी आपको नहीं दी है। इतना सेठ जी का भाव था। तीसरी बात, दो भाइयों की पंचायती में सेठ जी ने बंटवारा किया और तो सब ठीक था, एक अंगूठी पर मामला अटक गया। दोनों ने कहा कि अंगूठी हम लेंगे। जब एक चीज पर दो आदमी हक लगाने लग जाए तब उसका बंटवारा कैसे करें? वो कहे ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो मैं लूंगा। उसने कहा मैं लूंगा। सेठ जी ने कहा कि अंगूठी मेरे पास रहने दो, मैं विचार करूंगा कि किस प्रकार से अंगूठी का निर्णय करना है, मैं विचार करूंगा। ऐसा करके सेठ जी ने सुनार को बुला करके वैसी की वैसी अंगूठी बना दी और एक भाई को बुलाकर कहा कि ये लो अंगूठी, पर दूसरे भाई को कहना नहीं कि अंगूठी देख मेरे को मिल गई, मैंने लेके ली, ऐसे अपनी शेखी मत बताना। इसी प्रकार दूसरे को भी बुलाया कि ले अंगूठी तेरे को देता हूं, पर तू उसको मत बताना, खबर ही मत देना। कि दोनों ने किसी को कुछ नहीं कहा, दोनों को अंगूठी मिल गई। बहुत दिनों के बाद एक समारोह के अंदर दोनों भाई थे और वही अंगूठी पहन रखी थी। तो एक एक भाई ने एक एक से पूछा, ये अंगूठी कि ये अंगूठी? तब ये दोनों भाई सेठ जी के पास आए और सेठ जी से कहा, सेठ जी लड़ाई तो हमारी थी, आप अंगूठी के लिए एक नई अंगूठी क्यों बनाई? तो सेठ जी ने कहा कि मेरी एक अंगूठी से यदि आपकी लड़ाई मिटती है तो वो भगवत प्राप्ति के अंदर सहायता करने वाली बात है। यदि केवल एक अंगूठी के पीछे आप लड़ते रहते हैं तो आपका भगवत प्राप्ति के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता। एक बार सेठ जी ने किसी को काफी फटकार दिया। सेठ जी के छोटे भाई हरिकृष्ण दास जी थे, उन्होंने कहा आज आपने उसको काफी फटकारा, ऐसा नहीं फटकारना चाहिए, उसका अहित हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, हरिकृष्ण सुन, मेरे द्वारा किसी का अहित हो ही नहीं सकता, चूरू में अकाल के समय सेठ जी ने सस्ता बाजरा बेचने का कार्य किया। चार व्यापारी जिनकी बिक्री में हर्जा पड़ता था, सेठ जी के बारे में बहुत अपशब्द कहे। उन्होंने देखा कि वही अकाल पड़ा है, बाजरे को महंगा करेंगे। सेठ जी ने महंगा नहीं होने दिया, तो वो सेठ जी के बारे में बहुत अपशब्द कहे। एक बार सेठ जी से मिलने के लिए चूरू का कलेक्टर, एसपी एवं जिला जज आदि आए। उस समय सेठ जी भोजन कर रहे थे, उनमें आपस में चर्चा चल पड़ी, कलेक्टर के, एसपी के, इनके। कलेक्टर ने कहा, एसपी साहब, जो व्यापारी सेठ जी के लिए अनसंट बोलते हैं उनको पकड़कर अंदर कर दो। वहीं जज बैठा हुआ था, जज ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं 10 दिन तक उनकी जमानत नहीं होने दूंगा। सेठ जी बेचारे भोजन कर रहे, उस समय भोजन करके रहे, तो सेठ जी ने पूछा कि बोलो आप लोग कैसे कृपा किए, कैसे आए, और आपके यहां क्या चर्चा हो रही है। उन लोगों ने कहा कि जो व्यापारी आपके विरोध में अपशब्द बोलते हैं हम उनको जेल में डाल देंगे। सेठ जी ने उत्तर दिया कि आप लोगों को जो ये अधिकार दिया है ये लोगों को तंग करने के लिए थोड़ा ही दिया है। व्यापारी ने जो कुछ कहा है मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके पास आकर शिकायत करूं और उनको जेल में डालने के लिए कहूं तब आप करो, तब तो कोई बात है, मेरे इनसे कोई असर ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ जी कहीं भी जाते थे तो बिना जानकारी के जल भी नहीं पीते थे। एक बार सेठ जी किसी के घर गए, देखो तमाशे की बात, सेठ जी घर गए, प्यास तो लग रही थी। उस घर के मालिक ने बड़े आदर से सेठ जी से पूछा, सेठ जी जल पीजिए। लेकिन सेठ जी ने सिर हिला दिया और कहा कि मेरे को भूख नहीं है, मेरे को भूख नहीं है। अब वो उसकी गहराई को समझ नहीं सका। उसके घर से जब रवाना हुए तो सेठ जी के पास में जो सत्संगी था उसने पूछा कि सेठ जी ये आपने क्या जवाब दिया, उसने तो आपसे ये पूछा कि आप जल पीजिए, पानी पीने के लिए कह रहा था और आप कह रहे मुझे भूख नहीं है, इसका क्या मतलब है। सेठ जी ने कहा कि भाई मुझे प्यास तो खूब लग रही थी, झूठ मैं बोल सकता नहीं था और उसके यहां की शुद्धता की जानकारी थी नहीं, इसलिए उसके घर का पानी पी नहीं सकता था। और यदि यूं कह दूं कि मैं तेरा पानी नहीं पीऊंगा तो उसके हृदय में चोट लगती, इसलिए मैंने तीसरा रास्ता निकाला कि भूख नहीं है। इससे सब काम सलट गया। अहिंसा के पुजारी सेठ जी परम भागवत थे, फिर उन्हें जीव हिंसा कैसे सहन होती। प्रवचन करते समय उन्हें एक बार पता चला कि उनके द्वारा पहने गए जूते का चमड़ा हिंसा से प्राप्त है अथवा अहिंसा से, ये पता नहीं चला। उन्होंने उसी समय चमड़े का जूता पहनना ही बंद कर दिया। प्रवचन स्थल से नग्गे पांव ही आए, काफी दिन बिना जूते के ही घूमते रहे। फिर उन्होंने मोटर गाड़ियों के पुराने टायरों के सोल तथा ऊपर कैनवास का कपड़ा लगवाकर जूते का निर्माण करवाने की व्यवस्था की। अपने साथ ही साथ अन्य लोगों को भी हिंसा रहित तो वस्तु प्रयोग में लाने के लिए जीवन पर्यंत प्रेरणा दी। महिलाओं के सौभाग्यवती होने का एक लक्षण उनके द्वारा पहनी गई चूड़ियां होती हैं। उन दिनों चूड़ियां हिंसा से प्राप्त लाख से बनती थी। सेठ जी ने अपने सत्संगियों को समझाकर घरों में लाख के बदले कांच की चूड़ियां पहनने का प्रचलन करवाया। सेठ जी के समय में विदेशी वस्त्रों का बहुत बोलबाला हो गया था, जिसकी बुनाई में प्रयुक्त मांड में चर्बी लगती थी। कपड़े की जो मांड है, चर्बी लगती थी। इससे बचने के लिए सेठ जी ने हस्तनिर्मित वस्त्र पहनने की सलाह दी। जब लोगों ने प्रश्न किया कि ये सब शुद्ध सामान मिलेगा कैसे, तो सेठ जी ने गोविंद भवन कलकत्ता में कारीगर रखकर जूते का निर्माण किया, निर्माण करवाया तथा हस्तनिर्मित वस्त्र एवं कांच की चूड़ियां भी उपलब्ध करवाई कि यहां से खरीद लिया करो। दूरदर्शिता, छोटे से छोटी बात कहीं समाज के लिए घातक न बन जाए, सेठ जी इसका विशेष ध्यान रखते थे। उनकी पैनी बुद्धि आगामी दुष्परिणाम को जान जाती थी। एक बार कोई आदमी बड़े प्रेम से मीराबाई का भजन गा रहा था, मैं तो गुण गोविंद का गाशा ए माय, राणो जी रूठे तो मारो काई करसी। बड़े चाव से गा रहा था। आवाज सुनते ही सेठ जी ने आदमी भेजकर इस भजन को गाने से रुकवा दिया। कहता कि नहीं, बंद करो। लोग अचंभे में पड़ गए कि सेठ जी को मीराबाई का भजन अच्छा नहीं लगा। ये कोई सिनेमे का गाना थोड़ा ही है, ये कोई मनोरंजन का साधन थोड़ा ही है, ये तो बहुत बड़ी भक्त मीराबाई उसका भजन और सेठ जी ने रुकवा दिया। तो सबके मनोभाव को जान करके सेठ जी ने लोगों को बताया कि देखो, आजकल की स्त्रियां मीरा तो बनेंगी नहीं, और ये भजन सुनकर के घर वालों की अवहेलना अवश्य चालू कर देंगी कि राणो जी रूठे तो मारो काई करसी। इससे समाज में उच्छृंखलता बढ़ेगी। वो तो मीराबाई का और भगवान का आपस का भाव है। पहले मीराबाई बनो, फिर ऐसा गाओ। कितनी बड़ी सूझ थी उनकी। एक बार एक बहुत विशिष्ट आदमी परलोक चला गया, मर गया। उसके शुभचिंतक लोग उसका स्मारक बनवाना चाहते थे, तो सेठ जी ने अपने सत्संग में लोगों को बताया कि जो लोग दूसरे का स्मारक बनवाना चाहते हैं, एक प्रकार से उनके मन में अपना भी स्मारक बनवाने की इच्छा रहती है। यह सुनकर के वो आदमी सकपका गया। उसने विचार किया कि भाई, यदि मैं स्मारक बनाऊंगा तो मेरे अंदर स्मारक बनवाने की इच्छा हो जाएगी। सेठ जी किसी व्यक्ति के स्मारक या पूजा अर्चा के विरुद्ध थे। सेठ जी को यही अच्छा लगता था कि मनुष्य ईश्वर का पूजक बने, उनकी भक्ति करे। आजकल के जमाने में सच्चे गुरु तो मिलते नहीं, और वास्तविक गुरु होते हैं वो भगवान को कोई पूछते नहीं। सच्चे गुरु तो मिलते नहीं और वास्तविक गुरु भगवान को कोई पूछते नहीं। वास्तविक गुरु तो भगवान है, उनको कोई पूछते नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसको जानते नहीं। सेठ जी ने कहा कि इस प्रकार की एक परंपरा है, ये परंपरा अच्छी नहीं है। सेठ जी ने एक बार कहा कि मैं दूसरों के मरने पर यदि स्मारक बनवाना चाहता हूं, इसका अर्थ तो यह है कि मैं भी अपने मरने पर स्मारक बनवाना चाहता हूं। मेरे मरने पर कोई स्मारक बनाना चाहेगा तो मैं तो उसे अनुयायी नहीं मानता। आज्ञा पालन, सेठ जी का आज्ञा पालन अद्वितीय था। समाज के सजग प्रहरी से कोई भूल हो जाए कैसे संभव है? समस्त लोगों के हित के लिए जिसका जन्म हो उसकी क्रिया में कोई कमी रहे कैसे संभव है? उनके बचपन की दो घटनाएं बताई जाती हैं। एक बार सेठ जी के पिता खूबचंद जी ने इन्हें गर्मी की रात्रि में पंखा झलनने को कहा कि भाई गर्मी पड़े थोड़ा पंखा करो। सेठ जी पंखा झलने लगे, ठंडी हवा पाकर इनके पिताजी गाढ़ नींद में सो गए। सेठ जी बैठे सारी रात पंखा चलाते रहे। प्रातःकाल 4 बजे जब इनके पिताजी की नींद टूटी तो इनको पंखा झलते हुए देखा। पिताजी ने पूछा कि जयदयाल, तू आज जल्दी उठकर आ गया क्या? तो जयदयाल जी मौन रहे। तब इनके पिताजी को समझने में देरी नहीं लगी कि अरे ये तो रात्रि से ही पंखा झला रहा है। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि भविष्य में यदि कोई सेवा कहूं और मुझे नींद आ जाए तुम चले जाना, ये मेरी आज्ञा है। एक बार गर्मी के दिनों में सेठ जी बाहर से आए, बहुत प्यासे थे, लड़के थे तब की बात है, लड़कपन की। अपनी मां से कहा, मां बहुत जोर से प्यास लगी है, पीने के लिए पानी दे। मां पानी लाने के लिए घर के अंदर गई और वो बैठकर अपनी थकान मिटा रहे थे। दूसरे कमरे से पिताजी आए और बोले कि जयदयाल, ये दवाई ले, बाजार से दवाई ले आ। सेठ जी जल पीने की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत दवाई लेने चल दिए। इधर उनकी माताजी जल लेकर आई, सेठ जी को न देख करके अपने पति से पूछा कि जैदा कहां गया? तो उत्तर दिया, मेरी दवाई लेने के लिए बाजार गया है। क्यों, क्या बात है? कि वो इतना प्यासा है, मैं तो उसके लिए जल लेकर के आई, आपने उसको बाजार भेज दिया। तो पिताजी ने कहा, मुझे पता थोड़ा ही था, वो जल पी करके ही चला जाता। पिताजी के मन में बड़ा विचार आया, पानी पीने में समय लगाए बिना ये मेरी दवाई के लिए बाजार में चला गया, ऐसा आज्ञा पालक आज के जमाने में कौन हो सकता है? पिताजी इस बात को समझ करके बड़े गंभीर हो गए। सेठ जी को सादगी पसंद थी। उन्होंने अपने जीवन को मानव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। सेठ जी की आर्थिक स्थिति ठीक थी, फिर भी वे रेलवे के साधारण क्लास में यात्रा करते थे। उनकी प्रबल धारणा थी कि आचरण के द्वारा ही लोगों को सादगी सिखाई जा सकती है। रहने के स्थान या व्यापार की गद्दियों पर भी सत्संग करते थे। आजकल प्रवचनकर्ता के लिए बहुत मूल्यवान स्टेज होनी चाहिए, लेकिन सेठ जी अपने सत्संगियों के बीच में बैठकर सत्संग की बातें करते और उनका ये भाव रहता था कि सत्संग के अंदर कम से कम खर्चा होना चाहिए। सेठ जी सदैव भारतीय वेशभूषा धोती पगड़ी धारण करते थे, लेश मात्र भी बनावट या फिजूल खर्च नहीं करते थे, भोजन भी बहुत साधारण करते थे। एक बार उन्होंने चुरू में वासुदेव जी काबरा से भोजन बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि मुझे भोजन बनाना आता नहीं सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि तू जैसा बना देगा हम तो वैसा ही हमारा काम आ जाएगा। उन्होंने जैसे तैसे भोजन बनाया, न उनको साग बनाना है, न दाल बनाना है, न रोटी बनाना है। उन्होंने जैसा भी बनाया, सेठ जी ने उस भोजन की खूब प्रशंसा की, बड़े चाव से ग्रहण किया कि अरे भोजन का स्वाद इसी में ही है। एक बार सेठ जी गीता भवन से लखनऊ की ओर जा रहे थे। डिब्बे में सेठ जी, गोपाल जी मोहता एवं रामेश्वर जी मुंदड़ा थे। रामेश्वर जी मुंदड़ा अभी भी हैं, ये सब ये रजिस्टर वही बना के भेजते हैं। रात में करीब 2 बजे बरेली स्टेशन आया। वहां कई सत्संगी भाई सेठ जी से मिलने आए तो गोपाल जी ने धीरे से कहा, आप लोग 2 बजे आए हो, सेठ जी सो रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे दर्शन करके चले जाओ, हल्ला मत करना। इतने में रामेश्वर जी उठ गए और उठ करके उन्होंने सेठ जी को उठा दिया। सेठ जी कई लोग दर्शन करने आए हैं। बाद में सेठ जी ने कहा कि रामेश्वर तूने मुझे उठा दिया, बहुत अच्छा किया। ये लोग रात्रि में मेरे से मिलने आए और मैं यहां सुबह सोता रहूं, यदि यह नहीं उठाता तो बाद में मुझे मालूम पड़ता तो मुझे पत्र लिखकर इनसे कई बार माफी मांगनी पड़ती, मैं आपसे माफी मांगता हूं। सेठ जी जब चक्रधरपुर रहते थे तो कई बार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रात की गाड़ी से वे खड़गपुर आ जाया करते थे तथा कलकत्ता से कई लोग खड़गपुर आया जाया करते थे। वहां स्टेशन के पास घोड़ों का एक अस्तबल था, घोड़ों के रहने की जगह गंदी सी सूगली सी, वहां दरी बिछाकर बैठ जाते और रात भर सत्संग चलती, सुबह गाड़ी आती और चले जाते। सत्संगी भाइयों को बड़ा आश्चर्य होता, इतनी ज्ञान की मर्म की बातें करने वाले सेठ जी और एक घोड़ों के अस्तबल में वहां दरी बिछाकर बैठ करके उपदेश दे देते हैं, कितनी विचित्र बात है। सेठ जी कभी किसी को मिलने के लिए मना नहीं करते थे, दिन हो या रात, स्वस्थ हो अस्वस्थ। एक बार वे भिवानी गए, वहां तेज बुखार लगभग 103 डिग्री का हो गया। एक ब्राह्मण मिलने के लिए आया, कमरे के बाहर परमानंद जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि आज सेठ जी के बहुत तेज बुखार है, आप सुबह मिलने के लिए आ जाना। सेठ जी के कान में ये बात पड़ी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बुलाओ बुलाओ, जो मिलने के लिए आया उसको बुलाओ। उसी समय बुलाया और बड़ा संतोष करवाया। सेठ जी के आंख का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टरों ने बोलने के लिए मना किया, उनके पास किसी को जाने भी नहीं दिया गया। पहरे पर हरदत्त राय जी थे, एक आदमी 2-3 दिन से चेष्टा कर रहा था। एक दिन मौका मिल गया, उसने सेठ जी से कहा कि मैं कई दिन से आपसे मिलना चाहता हूं, लोग मुझे आने नहीं देते हैं। उन्होंने हरदत्त राय जी को बुलाकर फटकारा और कान पकड़कर उठ बैठ करवाई कि मना क्यों किया। एक बार सेठ जी जगन्नाथपुरी गए, वहां एक धर्मशाला में कमरे के लिए पूछा। प्रबंधक ने कहा कमरा खाली नहीं है। सेठ जी वापिस चले गए। किसी ने पहचान लिया, अरे ये गीता प्रेस के सेठ जयदयाल जी गोविंद का है। ओहो, तो मुझे तो पता ही नहीं, ये गीता प्रेस के अध्यक्ष हैं। वो प्रबंधक दौड़ा दौड़ आया, कहने साहब मुझे मालूम नहीं था आप जयदयाल जी गोविंद का हो, पधारो। कमरा खाली है, वो माफी मांगने लगा। सेठ जी ने कहा कि गीता प्रेस के काम के लिए मैं गीता प्रेस का अध्यक्ष हूं, यहां तो मैं बांकुड़ा से आया हुआ एक साधारण आदमी जयदयाल गोविंद का हूं, आपने मुझे मना कर दिया इसलिए अब मैं वहां नहीं जा सकता। उन्होंने गीता प्रेस के नाम के कारण मिलने वाला कमरा स्वीकार नहीं किया। गुणग्राही सेठ जी सदैव गुणग्राही थे, किसी में कोई गुण होता उसको स्वीकार करते, शास्त्रों की मर्यादा बनी रहे और तब के वातावरण और आज के वातावरण को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों के भी प्रसंग जिसमें आज के युग के अनुसार कोई बात अप्रासंगिक लगती उसे गीता प्रेस से प्रकाशित नहीं करवाते थे। शास्त्रों की जो बात उनके मत से विपरीत पड़ती थी उसका भी खुला विरोध नहीं करते, मुझे नहीं जचती बस इतना कह देते, मेरे समझ में नहीं आता ऐसी बात कह देते। केवल गुणों को ही लेना चाहिए, यही उनका सिद्धांत था। सेठ जी शास्त्रों का सम्मान करते थे, बिना शास्त्राज्ञा की कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था। संध्या करना सेठ जी का कठोर व्रत था, बिना संध्या के उन्हें चैन नहीं पड़ता था। रुग्णावस्था में और मृत्यु के दिनों में भी सेठ जी संध्या करते थे। जब शरीर में उठने की शक्ति नहीं रही तो अंगुलियों के पर्व पर ही गायत्री मंत्र का जाप कर लेते थे। एक बार गोविंद भवन कलकत्ता में एक बहुत धनी आदमी ने रामचरितमानस का पारायण करवाया। बिना शास्त्राज्ञा के उसने प्रत्येक चौपाई पर एक तुलसी पत्र इष्ट देव पर चढ़ाना चालू कर दिया तथा अपने परिचित विभिन्न प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर उनसे भी चढ़वाना चालू करवाया। सभी लोग आते, तुलसी पत्र चढ़ाते और उस व्यक्ति की प्रशंसा करते। इस कार्य में बड़े बड़े विद्वान और संत महात्मा भी लग जाते थे। संयोग से सेठ जी गोविंद भवन कलकत्ता आए, इनको आया देखकर उस व्यक्ति ने इनसे भी कहा, सेठ जी आप भी तुलसी पत्र चढ़ाओ। सेठ जी गए लेकिन एक भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया। उस व्यक्ति ने बार बार अनुरोध किया तो तुलसी पत्र चढ़ाना तो दूर, उससे सेठ जी ने पूछ भी लिया कि इस तरह का विधान कहीं शास्त्र में आया है क्या, एक चौपाई पढ़ो तुलसी डालो, एक चौपाई पढ़ो तुलसी डालो, यह गोविंद भवन है इसकी जवाबदेही मेरे पर है, शास्त्र विरुद्ध आयोजन कभी नहीं करना चाहिए, तुलसी पत्र से सालग्राम जी आदि की अर्चा होती है, अतएव आप अशास्त्रीय कार्य नहीं कर सकते, ऐसी बात थी।